ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। गीता सुगीता कर्तव्याः किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृताः। अथ पंचदश अध्याय श्लोक संख्या 2। ऊर्ध्वमूलं मधशाख अश्वत्थ प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवीत्। ऊर्ध्वमूलं मधशाख अश्वत्थं प्राहुरव्यय छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवीत्। अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। जैसा आप लोग कल से सुनते आ रहे हैं, यह जो भगवद गीता की कक्षा, ये सार्वभौम प्रभु जी के द्वारा होने वाली थी और हमने ही उस विज्ञापन बोर्ड में लगाया है 22, 23, 24, 25, 26 पाँच दिन के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसी कृष्ण बलराम की लीला होती है, तो आज कुछ विशेष मीटिंग है। परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी आए हुए हैं और जितने भी वृंदावन के वरिष्ठ भक्त हैं, कुछ विशेष कार्यक्रम को लेकर के बैठक बुलाई गई है, इसलिए उन्हें वहाँ जाना पड़ा। और जो देने वाले थे सभी गए, सार्वभौम प्रभु, वैष्णव प्रभु, परम पूज्य श्री राधा रमण महाराज, ये सब चले गए। ये सब ने हमें कहा, तो सार्वभौम प्रभु की ओर से मैं प्रक्सी लगा देता हूँ। तो कल आप लोगों ने सुना था, प्राय प्रथम श्लोक की व्याख्या हो गई होगी। जैसा आप लोग जानते हैं, भगवद गीता हमारे इस संस्था में सबसे पहले पढ़ाई जाती है। इसमें 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के अंत में योगः शब्द है, योगः। यहाँ तक कि अर्जुन को दुख हो रहा है और उस अध्याय का नामकरण किया गया अर्जुनस्य विषाद योगः। अर्जुनस्य विषाद योगः, वहाँ से लेकर 18 अध्याय तक पूरे गीता के जो 18 अध्याय नाम है, सब में योग है। प्रथम अध्याय का नाम रहा अर्जुनस्य विषाद, दूसरे अध्याय का नाम रहा सांख्य योग, और तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग, चौथे अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान योग, और पंचम अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग, अर्थात कृष्ण भावनामृत में कर्म प्रभुपाद जी ने ऐसा नामकरण किया है। षष्ठ अध्याय का नाम, हाँ जी, ध्यान योग, और सप्तम अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग, आठवें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। कैसे व्यक्ति किस उपाय के द्वारा उस ब्रह्म को, उस भगवान को प्राप्त करता है, जिसका लक्षण प्रभु ने बताया, जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। नवम अध्याय का नाम रहा राज विद्या राज गुह्य योग। दसवें अध्याय का नाम रहा विभूति योग, और ग्यारहवें अध्याय का नाम रहा विश्वरूप दर्शन योग। सब योग, देखो दर्शन कर रहा है फिर भी योग। और बारहवें अध्याय का नाम भक्ति योग, जय हो। और तेरहवें अध्याय का नाम प्रकृति पुरुष विभाग योग। इस नाम से अध्याय में किसकी चर्चा होगी व्यक्ति जान सकता है। चौदहवें अध्याय का नाम रहा गुणत्रय विभाग योग, और पंचदश अध्याय जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं पुरुषोत्तम योग, और सोलहवें अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग, सप्तदश अध्याय सत्रहवें अध्याय का नाम रहा श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा कितने प्रकार की है अर्जुन ने पूछा, और अठारहवें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो गीता के इन 18 अध्यायों के कम से कम नाम तो हमें याद रखने हैं। अब पंचदश अध्याय जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, श्री कृष्ण ने पंचदश अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा, इस अध्याय में 20 श्लोक है, कुल मिलाकर के 20 श्लोक है। ऐसे और एक अध्याय है जिसमें 20 श्लोक है, कौन सा, 12वां अध्याय। तो इन 20 श्लोकों में प्रभु ने संपूर्ण शास्त्रों का सारांश दिया है, और सारांश को दे करके उन्होंने उपसंहार के रूप में कहा, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम् उक्तम मयानघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ठीक है, इति गुह्यतमं शास्त्रम, इति शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण शास्त्र यहीं पर समाप्त होता है। कुछ गीता के विद्वानों का मत है कि भगवत गीता का जो विषय है, जो वक्तव्य है, जो देना चाहते थे श्री कृष्ण, यहीं पर उन्होंने दे दिया, अर्थात पंचदश अध्याय तक उन्होंने दे दिया, और 16 17 18 ये तीन अध्याय इसके परिशिष्ट है। इसी के अंदर कुछ कुछ विशेष बातें हैं जिनकी चर्चा 16 17 18वें अध्याय में हुई है, बाकी 15वें अध्याय तक संपूर्ण शास्त्र समाप्त हो रहा है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं इति, इति माने समाप्त। हम लोग निबंध लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते इति, जैसे कोई अध्याय समाप्त होता है, भगवद गीता का भी अध्याय समाप्त होता है, तो व्यासदेव जी क्या लिखते हैं, इति, हाँ जी, इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अमुक अध्याय योग नामः तृतीयाध्याय चतुर्थाध्याय जो भी अध्याय है, ठीक है ना, इति शब्द से पूर्णाहुति करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, हम तुम्हें संपूर्ण वेदों का गुह्यतम विभाग को दे रहे हैं। गुह्यतमं, गुह्यतमं शब्द का अर्थ होता है जितनी गोपनीय बातें हैं, जितने गोपनीय ज्ञान है, सर्वोच्च गोपनीयता को कहते हैं गुह्यतम। इसको जिनको व्याकरणगत ज्ञान है वो इसको समझ सकते हैं, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। हाँ यस, अंग्रेजी में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, संपूर्ण तुलना। हाँ, ये तो उसके बाद और कोई तुलना नहीं है। गुड, बेटर, बेस्ट। तो वेस्ट को कहते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो इति गुह्यतमम शास्त्रम, और संपूर्ण गोपनीय ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान की चाबी यही है। इदम, यही है। इदम माने यह, जैसे हम कहें इदम पुष्पम, ये पुष्प है। इदम संस्कृत में इदम शब्द को ये है इदम। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम, मेरे द्वारा कहा गया है। किससे कहा गया? मयानघ, आपसे। आप कैसे हो? आप निष्पाप हो। इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति जितना निष्पाप होगा, शास्त्र का गुह्यतम अंश, गोपनीय अंश की परत उनके हृदय में धीरे धीरे खुलती चली जाएगी। इसलिए वेद कहता है धर्मम चर, सत्यम बद, सत्य कहो, धर्म का आचरण करो। अधर्मी व्यक्ति कभी भी शास्त्रों का भाव को समझ नहीं सकता, कभी नहीं समझ सकता, नेवर। ही कैंट अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंशियल मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर। इसलिए शास्त्र कहता है जितना जितना हमारा जीवन शुद्ध होता चला जाएगा, ज्ञान का जो दर्शन है, जो अर्थ, उतना उतना खुलता चला जाएगा। एक बात हम आपसे प्रमाण के रूप में कह दें, श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय कीर्तन करते थे, कई श्लोक बोला करते थे, प्राय 7-8 श्लोक बोला करते थे, कई बंगला प्यार भी बोला करते थे। तो उनमें से एक श्लोक है संस्कृत का, काव्य प्रकाश का, जैसे मान लीजिए कोई उपन्यास का वो श्लोक है, तो वो इस प्रकार से है, यह कौमार हर स एव बर स्ता एव चैत्र क्षपा स्ते चोन मिलित मालति सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोधसि व्यतसि तरुतले चेतः समुत्कंठते। हो सकता है ये श्लोक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद थे वो बड़े बड़े विद्वान थे, उनके लिए इस श्लोक का अर्थ को समझना कोई भारी काम नहीं था, बहुत कठिन नहीं था। यह कौमार हर स एव बर स्ता एव चैत्र क्षपा, परंतु कबीराज गोस्वामी कहते हैं यही श्लोकेर अर्थ केह नहीं जाने, इस श्लोक का अर्थ को कोई नहीं जानता था, जबकि जो व्याकरण जानने वाला तुरंत इसका अर्थ करेगा। इसका क्या अर्थ करेगा? यह कौमार हर स एव बर, यह माने जो, कौमार हर माने मेरा कुंवारापन को, कुमारी अवस्था का अपहरण जिसने किया था। इसका मतलब ये हुआ कि एक युवक और एक युवती दोनों में प्रेम हुआ, ठीक है, तो युवक ने उसका कुमारी अवस्था का खंडन किया, उसका कौमार्य का अपहरण किया। यह कौमार हर, वो कुमारी, वो नायिका कह रही है कि जिसने मेरी कुंवारापन का हरण किया है, स एव बर, वही मेरा बर बना हुआ है, अर्थात उसी के साथ मेरा विवाह हुआ है। स्ता एव चैत्र क्षपा, चैत्र मास माने बसंत ऋतु की जो पूर्णमासी है, चैत्र मास की जो पूर्णमासी है वो भी आज है। सा एव चैत्र क्षपा स्ते चोन मिलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला, और मालती पुष्प खिला हुआ है, उसको स्पर्श करके प्रौढ़ा वायु बह रही है, मंद सुमंद शीतल वायु का प्रवाह है। प्रौढ़ा 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 माने बूढ़ा हो जाना, वृद्ध। तो बूढ़े लोग जल्दी नहीं चल पाते हैं। चल पाते हैं? वो कैसे चलते हैं? लाठी लेके ठुक ठुक चलते हैं, धीरे 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 धीरे। तो यहां वायु का विशेषण वृद्ध के साथ दिया गया। जोर से झंझा बात किसको अच्छी नहीं लगती, पर धीरे धीरे जो वायु चलती है वो सबको सुहाती है। इसलिए यहां कवि लिखता है कि प्रौढ़ा कदम्बा नीला, उस सुरभि उस मालती पुष्प को छू करके जो धीरे धीरे मंद गति से मंथर गति से जो वायु प्रभावमान है वो भी आज चल रही है। एव चैत्र क्षपा, वही चैत्य पुनम है, वही मालती खिला हुआ मालती पुष्प है, और उसको स्पर्श करके सुंदर शीतल मधुर मंद वायु का प्रभाव है। और क्या है? सा एव, मैं वही नायिका हूं, मैं वही नायिका हूं, वही वर है। लेकिन रेवारोधसी बेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते, जब हम लड़की थी, जब वो लड़के थे, और हम कुमारी थी, वो कुमार थे, हम दोनों चोरी चोरी छिपे छिपे उस रेवा नदी के किनारे बेतसी झाड़ी के नीचे मिलते थे, वो जो आनंद वो अभी नहीं है। बताइए, चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को रथ यात्रा के भगवान जगन्नाथ के सामने गा रहे थे। आपको अच्छा लगता है सुनने में ये श्लोक? लगता है अच्छा? कोई सोचेगा भले आदमी है ये, कोई दीवाना है, इस तरह का श्लोक क्यों गाता है? रेवा रोधसी बेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते, मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है उस प्रेमी से मिलने के लिए। इस श्लोक को जब चैतन्य महाप्रभु पढ़ते थे, साक्षात भगवान गा रहे हैं, इसका कोई अलग अर्थ नहीं हो सकता है। तो इस श्लोक को जितने भी सुनते थे, कई लोग के मन में भ्रम पैदा होता था, पता नहीं इस श्लोक क्यों गा रहे हैं, क्या कारण है, कह नहीं जाने। यही श्लोक का अर्थ, कह नहीं जाने। पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी केवल इस श्लोक का अर्थ जानते थे। क्यों जानते थे? ताहार द्वितीय स्वरूप श्री दामोदर, ये स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप माने जाते थे, और चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण कृपा स्वरूप दामोदर गोस्वामी पर थी। और स्वरूप दामोदर इस श्लोक को जब महाप्रभु पढ़ते हुए सुनते थे तो उनको भारी प्रसन्नता होती थी। वो उसी श्लोक के अर्थ को जानते थे कि वो भागवत में ये श्लोक कहाँ है, इसका अर्थ कहाँ है। तो एक साल रूप गोस्वामी जी गए थे और महाप्रभु के मुखारविंद से इस श्लोक का पठन सुन करके उन्होंने इसका अर्थ एक ताड़ के पत्ते में लिख करके जो छप्पर है उसके अंदर डाल दिए थे। तो महाप्रभु गए ऊपर देखे और ताड़ की पत्ती में वो कुछ लिखा हुआ था उसको निकाल करके पढ़ने लगे, और पढ़ के महाप्रभु गदगद हुए, प्रेम से गदगद हुए। उसी समय रूप गोस्वामी आए तो महाप्रभु ने कान ऐंठ करके एक तमाचा जड़े, बोले मोर मनेर कथा तुम्ही जानी लगे मने, तुमने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया? स्वरूप दामोदर है स्वरूप, जरा इनसे पूछो इसने मेरे मन की बात को कैसे जानी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, फलेन फल कारणम अनुमियते, फलेन फल कारणम अनुमियते, किसी वृक्ष के फल को देख करके व्यक्ति को पता लग सकता है वो फल कैसा है, फल कैसा है। बीज बोए बबूल को आम कहां से होए, बबूल के वृक्ष में कभी भी आम का फल नहीं फलता है, आम का फल फलता है निश्चित रूप से वो आम का वृक्ष है। हे प्रभु, आपके श्लोकार्थ को यह रूप गोस्वामी जानता है, रूप जानता है, इससे पता चलता है कि आपकी कृपा उस पर भई है, अन्यथा इसका अर्थ कोई नहीं जान सकता। फलेन फल कारणम अनुमियते, तो महाप्रभु को मानना पड़ा, यस आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, योग्य पात्र देखी आमार कृपा है, मैंने देखा कि रूप इज अ फिट कैंडिडेट, ये योग्य है, ये निष्पाप है, सरल हृदय है, इसलिए मेरी अनुकंपा कृपा की वर्षा उस पर हुई है। इसलिए इस श्लोक का अर्थ वही जानता है। तत्पश्चात रूप गोस्वामी ने लिखा, आहोष्टते नलिननाभ पदार बिंदम योगई स्वरे हृदय विचिंत्य अगाध बोधई संसार कूप पतित तरणाल तरणावलंबम गेह जोसाम अपि सदा मनसी उदियात न। ये भागवत के गोपियों का श्लोक है। हे प्रभु, हम जैसे घर गृहस्थियों में फंसे हुए व्यक्तियों के लिए आपका चरण कमल वास्तव में नौका के समान है। आप आओ, आपका चरण कमल बड़ी बड़ी योगियों के द्वारा चिंतनीय है, हम कहाँ चिंतन कर सकते हैं। आप हम पर कृपा करो, कृपा के द्वारा हमारा उद्धार करो। ये उसका अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु इसी भाव में गाते थे। तो भले ही व्यक्ति गीता पढ़ ले, गीता के शब्दों को रट ले, लेकिन जैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा यही श्लोक के अर्थ क्यों नहीं जाने, कोई नहीं जान सकता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मयानघ, तुम निष्पाप हो इसलिए हम कृपा करके तुम्हें ये गोपनीय ज्ञान मैंने दिया है। तो प्रश्न उठेगा, यदि गोपनीय ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसका परिणाम क्या है, किम तत् लक्षणम, उसका क्या लक्षण है, किन किन लक्षणों से वो व्यक्ति जाना जाएगा। ना कहते एतद बुद्ध्वा, इस ज्ञान को जान करके बुद्धिमान स्यात्। जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानेगा बुद्धिमान बन जाएगा। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। बुद्धिमान बनने के लिए किसी वकील के पास जाकर के भाड़े की बुद्धि लाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो दे भी नहीं सकता, मांग करके लाओगे कब तक रहेगा। तो श्री कृष्ण का कहना है, एतत बुद्ध्वा, यदि हम जान जाएंगे कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है और जीव उनका अंश है, तो एतत बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, स्यात् माने बुद्धिमान हो जाता है। उसे एक जगह में यहां पर बुद्धिमान शब्द आया है और एक जगह में बुद्धिमान शब्द आया है। कहां पर आया है, मेरे ख्याल में चतुर्थ अध्याय में आया है, किम कर्म कर्मेति कवयो, उसी जगह में आया है बुद्धिमान। जो विकर्म को, कर्म को, अकर्म को जानता है वो बुद्धिमान है ना, वो चतुर्थ अध्याय गीता में आप लोग ढूंढ सकते हो। तो श्री कृष्ण पुनः यहां कहते हैं, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। और क्या होगा, कृतकृत्यस्य भारत, हे भरतवंशी, उनको जो करना था उसने कर लिया। कृतकृत्य माने, हम लोग सभी नॉर्मली ये शब्द यूज करते हैं, अरे बाबा हम तो कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य शब्द का क्या अर्थ है, हाँ जी क्या, हाँ ठीक है ठीक है, ये तो मोटा अर्थ है, हाँ जी ये मोटा अर्थ है, लेकिन कृतकृत्य शब्द का अर्थ आप लोग जानिए। कृत्य माने जो हमें करना है, राइट। कृत्य जैसे हम कहते हैं खाद्य, जो खाए जाने योग्य है। कृत्य जो किए जाने योग्य है। कृत माने हो गया, जो करने योग्य है वो हो चुका है, हो गया है, उसी का नाम है कृतकृत्य। इसका अर्थ हुआ, जब तक हम श्री कृष्ण पुरुषोत्तम को नहीं जानते हमारा कृत्य नहीं हुआ है। इसका अर्थ हुआ हमारे लिए कृत्य एक ही है, वो क्या है, श्री कृष्ण को जानना, दैट इज द ओनली वर्क। इसीलिए गीता की महिमा में कहा गया है, एकम शास्त्रम देव के पुत्र गीतम, एको देवो देव के पुत्र एवो, एको मंत्रः तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, कर्मापि एकम, एकम कर्मम, वो ही है कृत्य। और कृत्य को कुछ भी नहीं है। और जो कोई बहाना बनाता है हमारा ये कृत्य है, ये कृत्य है, वो कृत्य है, वो केवल फिजूल की ही बात करता है। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि कृत्य कृत्यश्च भारत। भारत शब्द का क्या अर्थ है, कि भारत में जिन्होंने जन्म लिया है उनके लिए एकमात्र कृत्य है वो क्या है, श्री कृष्ण को जानना। और श्री कृष्ण को क्या जानना, हाँ जी, शास्त्रकारों ने कहा है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है अश्वकर्ण, जैसे किसी का नाम है गोकर्ण, केवल नाम से जान लिया इससे काम नहीं बनेगा। यो माम व्यति तत्वतः, इसीलिए श्री कृष्ण ने जोर देकर के कहा, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मयानघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। अच्छा बताओ और एक अर्थ इसका हो सकता है, कृतकृत्य माने जिस समय जो कर्म करने लायक है उस कर्म को जो कर लेता है वो बुद्धिमान होता है कि नहीं, वरना विशेष अब वो टाइम उसका पार हो चुका है। मान लीजिए 65 साल उम्र हो गया और वो लड़की ढूंढ रहा है शादी करने के लिए, ये कोई बुद्धिमान थोड़ी ना है। अरे 25 साल में ढूंढ लेता, 25 साल जब तुम्हारी जवानी थी, जवानी में विवाह करना उचित है, इसका औचित्य है। वृद्धापन में वार्धक्य में विवाह करना इसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कृतकृत्य शब्द का अर्थ होता है जिस समय जो करना है उस समय उस काम को कर लेना, यही बुद्धिमत्ता है। क्या बुद्धिमत्ता है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हैल जार, बोलिए, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हैल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, श्री कृष्ण वही बात कह रहे हैं, कृतकृत्यस्य भारत, भारत भूमि में जन्म लिया है और अपने जो कर्म करना है उसको नहीं किया है तो क्या रहा, अकृत्य कृत्य, उसने जो कर्म करने के लिए आया था वो कर्म किया नहीं। ये तो अंतिम श्लोक की इतनी हल्की सी व्याख्या हुई, अब हम द्वितीय श्लोक की व्याख्या करेंगे। तो कल आप लोगों ने जैसा भी सार्वभौम प्रभु जी कहे होंगे आपने सुना होगा, ये पंचदश अध्याय का प्रारंभ हो रहा है, किस लिए प्रारंभ हो रहा है, व्हाट इज द कनेक्शन टू द 14th चैप्टर, क्या है। कई श्रोता वहां कल के श्रोता यहां होंगे, अब हमें बताइए पिछले 14वें अध्याय के साथ इस 15वें अध्याय का संबंध क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप। क्यों कहा, आप लोग जानते हो सबसे बढ़िया प्रवचन करने वालों में से बढ़िया प्रवचन करने वाले कौन है, श्री कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री कृष्ण का जितने गुणों का वर्णन हुआ है 64, उनमें से एक गुण का नाम है बावदुक। बावदुक माने फालतू नहीं बोलते, इधर उधर नहीं बोलते, एकदम कनेक्टिव बात बोलते हैं, और इसको कहते हैं ग्रंथ, कोई भी है, वेद ग्रंथ, गीता ग्रंथ, रामायण के ग्रंथ। ग्रंथ शब्द का क्या अर्थ है, ग्रंथ माने जो गूंथ दे एक के साथ एक, एक के साथ एक, के साथ एक, उसी का नाम है ग्रंथ। इसका एक श्लोक में क्या है वो दूसरे श्लोक के साथ इसका कनेक्शन है, इसलिए इसका नाम ग्रंथ है। ध्यान के देके सुनना, जितने भी शास्त्र है उसका सारा सारा नाम है ग्रंथ, एक के साथ एक का कनेक्शन है, ग्रंथ है, गुथा हुआ है, पिरवाया हुआ है। तो 14 अध्याय के साथ पंचदश अध्याय का संबंध क्या है, हाँ जी, 14वें अध्याय के अंतिम दो श्लोक क्या है, हाँ जी हाँ जी बोलिए, ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसका पहला वाला, माम चो जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समत्वेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख सौकांति कस्य च। ठीक है, यहां पर जीव की तुलना, जीव का जो धर्म है, जो व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाएगा, ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसका लक्षण कहा गया ये सुखमय है, ये सुखमय है, इनमें केवल आनंद ही आनंद है, इसमें निरानंद नहीं है, इसमें दुख नहीं है। इसलिए जीव जीव जो है ये भी सच्चिदानंद विग्रह है नहीं। जीव जो है ये भी सच्चिदानंद विग्रह, सभी शास्त्र कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश है, सागर की बूंद भी नमकीन है, सागर में बहुत सागर का पानी नमकीन है, उसकी एक बूंद भी नमकीन है, उसमें नमक है, खारा है वो। तो जो जीव सुख सुखमय है, चेतन है, अमल है, श्री कृष्ण का अंश होने के नाते श्री कृष्ण भी सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है। और प्रश्न उठेगा ये जो संसार में फंसा हुआ है, ये संसार कैसा है? जिस संसार में फंस गया है जीव, उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो भगवत अंशत्व की प्राप्ति जो है, उसका स्वरूप है, उसको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वो संसार कैसा है और कैसा फंसा हुआ है, जरा उसका वर्णन करो। इस प्रश्न के उत्तर में ये पंचदश अध्याय का प्रारंभ होता है। और इसमें तीन निष्कर्ष मेरे बंधु, तीन निष्कर्ष है, क्या है, नोट हो तो नोट करो। संसार छेदी वैराग्यम, नंबर वन। क्या है? संसार छेदी वैराग्यम जीव में अंश सनातन अहम सर्वोत्तम श्रीमान इति पंचदशे स्मृता। पंचदश अध्याय में तीन बातों की, तीन विषयों की चर्चा हुई है। संसार छेदी वैराग्यम, संसार को छेदन करने वाला अस्त्र है वैराग्य। मेरे प्रभु, हर वस्तु का छेदन हर अस्त्र से नहीं होता है ना। पत्थर को फोड़ना हो तो क्या चाहिए? हाँ जी, हथौड़ा चाहिए, वो मूसल चाहिए, मूसल वो छेदक है उसका। आलू के लिए एक पतला चाकू होने से चल जाएगा, और युद्ध में किसी की गर्दन उड़ानी हो तो पैनी तलवार चाहिए, है नहीं। और किसका दिल तोड़ना हो तो कटु वचन बोल दो, कड़ी भी वाणी बोल दो, बस उसका दिल टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है अस्त्र तो ठीक है, वाकवाण और धनुष से निकला हुआ बाण, इन दोनों में घायल ज्यादा करने वाला है वाकवाण, ये भी छेदक है। ऐसी वाणी बोल दो बस जीवन भर के लिए घाव बना रहे, वो कभी भरेगा नहीं। इसलिए कहते हैं वाणी को संभाल करके बोलना होता है, एक बार निकल जाती है तो ये तो अचूक है, वो घायल करके वापस आती है, आप नहीं कह सकते हैं ये सॉरी, सॉरी क्या है, बोल दो दिया, ये केवल एक संबोधन मात्र सॉरी। तो दिल को टुकड़ा करने वाली है वाणी, और सब्जी को छेदन करने वाली है चाकू, गर्दन को उड़ाने वाली है तलवार, और पेड़ को काटने वाली है कुल्हाड़ी। इसी प्रकार से संसार रूपी वृक्ष को छेदने वाला है वैराग्य। इसीलिए बलदेव विद्याभूषण पाद ने कहा संसार छेदे वैराग्यम, संसार को छेदन करने वाले मेरे मित्र और कोई अस्त्र नहीं है, वो है वैराग्य। वैराग्य माने, हाँ जी, वैराग्य माने राग का विपरीत वैराग्य, इसमें राग मत करो, राग नहीं है, जो मिला खा लिया, हाँ जी बीतराग, आगे चल के आएगा, राग नहीं है, आसक्ति नहीं है। संसार छेदी वैराग्य। नंबर दो क्या है? जीवों में अंश कह सनातन, और मेरा सनातन अंश जीव है। किसका अंश है? श्री कृष्ण दावा करके कहते हैं जीवो में मेरा अंश है, और कैसा है? सनातन, जैसा मैं सनातन हूं वो भी सनातन है। जीवो में अंश है सनातन, और क्या है, अहम श्रीमान सर्वोत्तम, मैं श्रीमान हूं। श्रीमान माने मेरे से कभी लक्ष्मी चुकती नहीं है, मेरा नाम लक्ष्मीपति, मैं सदैव लक्ष्मीपति बना रहता हूं, इसलिए अच्युत है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी आज है और कल भाग जाएगी, चला लक्ष्मी चला प्राणा चला चलित जौवन चला चलित संसारे धर्म, ये कोई निश्चल है। चाणक्य पंडित ने कहा चला चलित ही जौवन, चला लक्ष्मी, लक्ष्मी का दूसरा नाम है चला, चलती है ये, पर एक जगह से नहीं चलती, कहां से, श्री कृष्ण से नहीं चलती। इसलिए श्री कृष्ण छाती ठोक करके कहा अहम श्रीमान, हम सब बेकार है, वास्तव में हमारा कोई श्रीमान नहीं है, पर नाम में केवल धोखे में लिखा था श्रीमान श्रीमान रमाकांत दास, अरे काहे को श्रीमान है, कोई श्री नहीं है, कोई श्री नहीं है। श्री के तीन अर्थ है, श्री माने विद्या, श्री माने सुंदरता, श्री माने धन है। ना हमारे पास धन है, ना हमारे पास विद्या है, ना हमारे पास सुंदरता है। क्या सुंदरता है, सबसे सुंदर व्यक्ति को भेज दो स्वर्ग लोक में, वो नाक नाक उड़े, छे 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 छे, जाओ यहां से, भागो यहां से, बदबू आ रही है। अरे कितने भी सुंदर, भगवान गौतम बुद्ध की स्त्री से तो कोई सुंदर थी नहीं। गौतम जी को बैराग्य, सिद्धार्थ को बैराग्य आया, अपनी सोई हुई स्त्री को देखा, उनकी नासिका से पानी निकल रहा है, आंखों से गंदगी बह रही है। अच्छा गोपा तुम्हारी यही सुंदरता है, वाह, छोड़ दिया उसने। तो हम लोग श्रीमान हो ही नहीं सकते, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा अहम श्रीमान, श्रीमान होने के नाते सर्वोत्तम, मुझसे बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बढ़कर के कोई नहीं है। कोई नहीं, ना तस्य समस्य अभी अधिकस्य च दृश्यते, ना तो उनके बराबर का कोई है, फिर बढ़कर के कौन होगा, बराबर का है नहीं तो बढ़कर के कौन। इति पंचदशे स्मृतः, ये 15 अध्याय में चर्चा का विषय है। कितनी बातें हैं, वैराग्य संसार छेदी वैराग्यम, सनातन जीव और पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, बस 15वें अध्याय में इन तीन बातों की चर्चा। अब नंबर 1 आएगा संसार छेदी वैराग्यम, वो जीव कौन है, कौन है। जैसे हमने कहा कि पीछे तो कहा गया ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो जीव को, जीव ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो जीव कौन है, कैसा संसार में फंस गया, इसलिए 15 अध्याय का प्रारंभ हुआ। मेरे मित्रों भूलो मत, मैंने पूछा आपने बताया नहीं, कल बताना पड़ेगा कि 15 अध्याय का प्रारंभ किस लिए हुआ है। प्रश्न उठेगा वो जीव है कौन, अभी तक पूरे अध्याय में गीता आप लोग 15 अध्याय तक पढ़ लिया, 15 अध्याय के 7वें श्लोक तक जितने भी श्लोक हो गए वहां पर कहीं जीव की परिभाषा दी गई है क्या, है कहीं, कोई बताएगा हमें। हाँ जी, नहीं याद रहे चाहे ना रहे, गीता देख करके बताइए, कहीं नहीं है। ममैवांश जीवलोक के यही पर ही वर्णन है, जीव का जो परिचय है 15 अध्याय के 7वें श्लोक में ही है, इससे पहले नहीं है। इसलिए प्रश्न उठाया गया क जीव, वो जीव है कौन, पहले तो बताइए, और तुम कौन हो, तुम पुरुषोत्तम, तुम हो वो कौन, अरे संसार क्या है। इसलिए 15 अध्याय का प्रारंभ हो गया है। अब धीरे धीरे करके सुनिए, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानी यस्तम वेद स वेदवीत, सब वेदवीत। सबसे पहले प्रश्न उठना चाहिए इस संसार की तुलना वृक्ष के साथ क्यों की गई। हाँ जी, इसका मतलब संसार काटने योग्य है, माताजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, इसीलिए इस संसार की तुलना वृक्ष के साथ दी गई है। इसका धातु है वृक्ष, वृक्ष च वृक्ष, जो जिनकी उत्पत्ति कटने के लिए है उसी का नाम है वृक्ष। तो संसार की उत्पत्ति किसके लिए है, काटने के लिए ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। काटने में ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, है ना। संसार है काटने के लिए, संसार छेदी वैराग्यम, इसलिए इसकी तुलना वृक्ष के साथ की गई है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी जस्य परणानी जस्तम वेद सवेदवित। जैसा भी हो, सार्वभौम प्रभु जी ने कल बताया होगा, उसके हम पुनरावृत्ति करना नहीं चाहते, केवल संक्षेप में कह दिया। काटने योग्य है, वृक्ष है, और इस वृक्ष को कहते हैं अव्यय। अच्छा बताओ, आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठा कि वृक्ष काटने योग्य है, इसका मतलब कटेगा, इसका मतलब कटेगा, एक दिन ना एक दिन ये वृक्ष कटेगा। ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा, कटेगा, नहीं तो गिरेगा, कटेगा या तो गिरेगा। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वमूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, ये अव्यय वृक्ष है। ये तो बड़ी टेढ़ी बात है। आप कहे तो ये वृक्ष कटेगा, फिर आप कहे तो ये वृक्ष अव्यय है, कैसे है? एक मुंह में दो बातें हैं। अरे ये क्या बात है, संसारतीति संसार, संसार पूरा पूरा संसार ही नाश होता है, प्रलय किसके लिए, हमारे लिए थोड़े होता है। संसार के जो प्रलय की बात कही गई है शर्मा जी, कहा गया है 100 सूर्य एक साथ उगेंगे, है नहीं, और संकर्षण के मुख से आग निकलेगी। हमारी हमारा तापमान कितना है, 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट है ना, उसमें से 2-4 डिग्री ज्यादा हो जाए ना, हरिनाम राम नाम सत्य है, और संकर्षण के मुख से जब मुखाग्नि निकलेगी तो हम थोड़े बचेंगे। तो संसार का प्रलय होगा, 100 वर्षों तक बारिश होगी मूसलधारा, हमारा संसार क्या है, प्रलय हो जाएगा संसार का। आज तक प्रलय किसने नहीं देखी है ना, ये सब शास्त्र में वर्णन है, नोबडी कैन सी प्रलय। वो अलग, वो केवल उनके लिए ड्रामा था, ओरिजिनल प्रलय उसने नहीं देखा। प्रलय एक चीज है, कोई नहीं देख सकता, क्योंकि तुम तो थोड़ी से तापमान से मर जाओगे, प्रलय कहां देखोगे, रहोगे तो तब ना देखोगे। इसलिए शास्त्रीय कई प्रयोग है, उनका अर्थ जानना पड़ेगा। तो अव्ययम, अव्यय वृक्ष शब्द का अर्थ होता है क्या, जब तक चित्त में विवेक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं भई है, तब तक ये संसार वृक्ष अव्यय है, अविनाशी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे, भज गोविंदम मूढ़मति। जब तक व्यक्ति मूढ़ बना रहेगा, उसके लिए संसार अव्यय है। इसलिए बलदेव जी लिखते हैं कि उस व्यक्ति के लिए अविनाशी है जिसका विवेक ज्ञान जगा नहीं है। विवेक जगा तो तुरंत काट देगा, पंख उगी उस घोंसले में, वो पक्षी शावक तब तक रहेगा जब तक उसकी पंखें नहीं उगी है। पंख उगेगी तो वो उड़ जाएगा। वैराग्य ज्ञान रूपी, ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पंख लगी तो उड़ना चालू किया, कोई नहीं रोक सकता, उड़ेगा। पर तब तक जब तक अविद्या है, अविवेक है, उसके लिए यह संसार अव्यय है। इसके लिए अश्वत्थ माने कल नहीं रहेगा, किसके लिए नहीं रहेगा, जिसका ज्ञान वैराग्य पंख हुआ, कल तक संसार नहीं रहेगा। इसलिए दो बातें आई है, ऊर्ध्वमूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि, छंदांसि यस्य पर्णानि, छंदांसि वेद वाक्यानि, वेद के जो वाक्य है, यामिमाम पुष्पिता वाचम प्रवदंती विपश्चिता, विद्वान व्यक्ति वेदों के वाक्यों में रमते नहीं है। वेद कहता है श्वेतम आलभते, बोले इस फल की प्राप्ति के लिए इस बकरी को बलि चढ़ाओ, प्रजा के लिए इंद्र को कपाल में बलि चढ़ा भर करके चढ़ा दो। कई प्रकार की बलियों की बात वेद में आई है। अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व को बलि चढ़ा दो। इसको यामिमाम पुष्पितावाचम प्रवद्यन्ति अभिपश्चिता। जो अभिपश्चिता है, जिनको बुद्धि नहीं है, वो इस प्रकार के फेर में फंस जाते हैं। जिनको बुद्धि है, श्री कृष्ण ने क्या कहा, ऊर्ध्व मूलम मध शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसी जस्य प्रणानी यह स्तम वेद सवेदवित। जो इसको जानता है, क्या जानता है, इस ये जो ये कर्मकांड, ये संसार के स्वरूप को जो जानता है, सवेदवित, इसका क्या अर्थ हुआ, तस्य छेदन उपायज्ञो वेदवित इति भावः। अर्थात उस संसार को जो काट सकता है वो वेदज्ञानी है। केवल बोलने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तस्य छेदन उपायज्ञो वेदवित इति भाव, लिखो इसको संस्कृत में लिखो, तस्य छेदन उपायज्ञ, तस्य माने वृक्षस्य, उस वृक्ष की जड़ों को काटने वाला, काटने की विधि को जो जानता है, जो काटता है, वो वेदवित है। इति भाव, ये भाव है। इसीलिए वृक्ष की तुलना दी गई है। भगवान कहते हैं ये संसार वृक्ष है मेरे भाई, इसको काटो। काट माने काटने की विधि को जानो, और जिसने जान लिया वो वेद को जान लिया, ना कि बस वेद को केवल शब्द में उच्चारण किया। ऐसे ऐसे ऐसा नहीं हुआ, उच्चारण करने वाले तो बहुत हैं, बहुत बहुत मिलेंगे। समान वृक्षे पुरुषो निमग्न अनिजया सोचति मुह्यमान जुष्टम जजापस्यते अन्यमिषम धातु प्रसादात इति वीत शोक। बोल दिया तो क्या हो गया, श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आजे धामानि दिव्यानि तस्थो वेदाहमिन्तं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णः तमसः परस्तात। बोल दिया तो क्या हो गया, इससे नहीं होगा। तस्य छेदन उपायज्ञो वेदवित इति भावः। अर्थात उस वृक्ष को छेदन करने वाला जो है, जो उसको काटना जानता है, वो वेदवित है। इसका मतलब जिसने काट लिया है उसने वेद को जान लिया है। इसका मतलब जिसने वैराग्य को धारण कर लिया है उसने इस संसार को जान लिया है, काट दिया है। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्ध पांडव न ही संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। गीता अध्याय 6। उसी को योगी कहते हैं जिसने संन्यास ले लिया है। संन्यास माने जिसने संकल्प को त्याग दिया है। बैंक बैलेंस बनाने वालों के लिए नहीं है संकल्प का त्याग। संकल्प माने कुछ भी कल्पना नहीं है। हरि राखे तो राखे, हरि मारे तो मारे, हरि दे तो खाए, हरि ना दे तो उपवास रहे। कैसी मजेदार स्थिति है। इसी का नाम है रस। तस्य छेदन उपायोग्यो वेदवित इति भावः। अब दूसरे श्लोक में क्या थे, अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखं गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। श्री कृष्ण कहते हैं अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा। शाखा माने भोग योनिया। बोल भोग योनिया केवल ऊपर नहीं है, ऊपर नीचे चारों ओर फैली हुई है। अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा। तस्य शाखा मीन्स उस वृक्ष की शाखाएं हैं। ऊपर क्या है, स्वर्ग में क्या है, देवता बनोगे, और क्या बनोगे, गंधर्व बनोगे, और क्या, किन्नर, और क्या, यक्ष, और क्या, चारण, और भी कई कई नाम होंगे जो हम नहीं जानते हैं। वहां एक बार जाके देख लो, बढ़िया है, पूछो भाई क्या क्या वैरायटी है, अब बताओ, हम बनना चाहते हैं। परंतु बनने से प्रभु क्या होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। आप वहां चले जाओगे तो थोड़े दिन भोग करोगे, उसके बाद कहां आओगे, पुनः यहीं आओगे। अच्छा मान लीजिए कोई नरक भी गया, चला गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए कष्ट होगा, तो नरक भोगने के बाद फिर कहां आएगा, फिर कहां आएगा, फिर इधर आएगा। तो इसलिए शास्त्रकारों ने कहा पुण्य पाप का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। पुण्य करके स्वर्ग चले जाओगे फिर वहां से यहीं आओगे, पाप करके नरक चले जाओगे फिर वहां से यहीं आओगे। इसीलिए इसको कहते हैं कर्म भूमि, कर्मानिबंधिनी मनुष्य लोके, ये कर्म अनुबंधिनी है। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म बस बेस्वरा चिराखा, जो जस जो क्या है वो, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म बस बेस्वरा चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए यहां कृष्ण कहते हैं कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, अनुबंधिनी माने तुम्हारे हमारे कमर पे डोरी है, भाग नहीं सकते। ये जो भोग हैं जीव मात्र संकल्प कर सकता है, इच्छा कर सकता है, पर भगवत संकल्प न सिद्धि भवती। हम मनुष्य बनना चाहेंगे, यदि ईश्वर के सृष्टि में मनुष्य योनि ना होती तो तुम मनुष्य कैसे बन सकते थे, हम कोई नहीं बन सकते थे। इसीलिए भगवत संकल्प ना, भगवान के संकल्प के द्वारा हमको भिन्न भिन्न योनियां प्राप्त होती है। 84 लाख प्रकार की जो जीव योनियां है वो हमारा संकल्प का राज्य नहीं है, वो उनका संकल्प है। जल जा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य बिन्सति इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर कर्म योनि क्या है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक को कर्म योनि कहते हैं। यहां जैसा कर्म करेंगे वैसा वो चलेंगे। ऊर्ध्वम गच्छन्ते सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ते राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्थो अधो गच्छन्ते तामसाः। अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर जाएंगे, बीच में दान पुण्य करेंगे तो यहीं रहेंगे, और क्या करेंगे, निम्न घृणित कर्म करेंगे तो अधोगच्छन्ति तामसा। बहुत ढेर सारे अग्रवाल लोग हैं, प्राय अग्रवाल लोगों का जन्म मानव योनि में ही होता है। क्यों जानते हैं, क्योंकि बीज बोते हैं मानव योनि के लिए। और रहुगण से जब वो राजा कहते हैं, क्या नाम था, जड़भरत जी, हाँ क्या कहते हैं, रहुगणित तपसा न जाती निर्वपणात गृहत्वा। निर्वपणात, निर्वपणात शब्द का अर्थ होता है दान देना, ध्यान देना, निर्वपणात शब्द का अर्थ होता है दान देना। क्यों दान देना, बपन माने बीज बोना, जैसे हम कहते हैं बीज बपन कर लिया, तो निर्वपणात माने नेतराम बपन करने वाले, हमेशा दान देते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं हमेशा दान देने वालों को हम नहीं मिलते, वो अलग बात है, केवल भक्ति से ही मिलते हैं। कहना, उनका कहने का तात्पर्य है केवल भक्ति से ही मैं लभ्य हूं। पर अधिकतर लोग मनुष्य लोक में जो अपनी स्थिति को बनाना चाहते हैं वो दान प्रचुर मात्रा में करते हैं, तो निर्वपणात उससे भक्ति नहीं होगी। पर इसका मतलब नहीं कि दान नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है। पर हम यदि सकाम भाव से कोई दान बहुत देता है तो उसको मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है, उसको अच्छा भोग सुख मिलता है, जो दिया सो पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अधस्य ऊर्ध्वम च प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला, अधस्य मूला निसंततानी कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक है। इसके टीका में बलदेव जी लिखते हैं, हाँ, अधो मनुष्य पशुआदि योनिषु दुष्कृतैरि रुद्धम च देव गंधर्वादी योनिषु सुकृतिर विश्रुता, यानी कि देव गंधर्व जो योनि है वो सुकृति के कारण प्राप्त करता है, और मनुष्य इतर योनि पशु पक्षी जो योनि है वो दुष्कृत के द्वारा प्राप्त करता है। तो ये जो वर्णन है मेरे प्रभु, ये के रूपक है, ये के तुलना है, ऐसा वृक्ष कहीं देखने को नहीं मिलता। आप कहोगे कि प्रभु जी हमें ये पेड़ दिखाइएगा, नहीं, सिंपल एक रूपक है, एक समझाने के लिए एक तुलना है, एक 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 दृष्टांत मात्र है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं न रूप में से तथोप लभ्यते नान्तो न चादि न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुबिरुडर्मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। हे अर्जुन, मैंने जो तुम्हारे समक्ष इस वृक्ष का वर्णन किया है, ऊपर की ओर जड़ें हैं, नीचे की ओर शाखाएं हैं, और वेद मंत्र सब इसकी पत्तियां हैं, और जो विषय हैं इनके प्रवाल, इनके जो जो कोंपले हैं, टहनियां हैं, छोटी छोटी जो लाल लाल शाखाएं हैं, क्योंकि उसमें आसक्ति बनी रहती है, तो ये जो वृक्ष है ऐसा तुमको कहीं मिलेगा नहीं। न रूप में से तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थ मेनम सुबिरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। नहीं दिखता है लेकिन इसके जड़ें बहुत ही मजबूत है, बहुत गहराई पे है। गहराई पे माने हमारी आसक्ति कहां तक पहुंच हुई है हम नहीं बता सकते। बहुत बहुत गहरा। न रूप में से तथोपलभ्यति नान्तो न चादि न संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुबिरूढ़ मूलम। सुबिरूढ़ शब्द का अर्थ होता है बिरूढ़। बिरूढ़ माने परीक्षित महाराज जी के लिए द्वितीय स्कंद में कहा गया बिरूढ़ाम ममताम जहो। जब उन्होंने सुना कि हमें ब्रह्मसाप लगा है, तक्षक वो श्रृंगी ऋषि ने साप दे दिया। क्या दे दिया साप? हाँ जी, हाँ जी, वो समीक का पुत्र जो श्रृंगी ऋषि, उसने इति कौशिक उपस्पृश्य बाकवज्रम विषसर्जः। बाकवज्र, उन्होंने बाकवज्र छोड़ा। क्या छोड़ा? तक्षकम। वो तक्षक तुमको सप्तम दिवम वो सात दिन के अंदर डसेगा, काट देगा उसको। तक्षक सप्तमे हनी दक्ष तुष्म कुलांगारम चोदितो में तत्द्रुहम। तुमने ब्राह्मणों के प्रति द्रोह किया है, इसलिए मेरी वाणी, मैं अगर ब्राह्मण पुत्र हूं, मेरी वाणी सत्य है, तो आज के सातवें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। बागवज्रम विषसर्जा इति कौशिक्याप उपस्पृश्य। कौशिक नदी का जल लिया, उसमें आचमन किया, आचमन करके बागवज्रम विषसर्जा छोड़ दिया। जैसे ही परीक्षित महाराज जी ने सुना, तो जो बिरूढ़ा आसक्ति है, जो आसक्ति गहरी तक पहुंच चुकी है, क्षण भर में काट दिया। बिरूढ़ा ममताम ज, ममता का छेदन कर दिया। इसलिए मेरे प्रभु, ये संसार में जो रोग हैं, जो शोक हैं, जो वार्धक्य है, ये हमारे हित के लिए है। ये यदि नहीं होता ना, फिर किसी को वैराग्य नहीं होता, किसी को वैराग्य नहीं होता। और हमको केवल सबसे पहले सिखाया जाता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बार बार चिंतन करो, यहीं पे दोष है, यहीं पे दोष है, यहीं पे दोष है, ये दोष युक्त है। इसलिए श्री कृष्ण आग्रह करते हैं, इसका कोई ऐसा रूप देखने को नहीं मिलता, पर ये जो बिरूढ़ ममता है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। कैसा तलवार चाहिए? असंग। तुम्हारे जो संग हो गया है, हमारा जो हमारी जो ममता हो गई है, उसको असंग शस्त्र के द्वारा हम छेदन करेंगे। असंग को अंग्रेजी में कहते हैं, नहीं नहीं, इंडिफरेंस अलग अलग है, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट। इसी को यहीं से महात्मा गांधी ने लिया था, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग। हम तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करेंगे। असंग शस्त्रेण, संग हो गया है, तुम्हारे साथ आसक्ति हो गई है, हमें और आसक्ति नहीं करनी है। ये कपड़े हमें अच्छे लगते हैं, हम पहनेंगे तुम्हारे मिल के कपड़े, पर हम पहनेंगे नहीं, हम चरखा से बनाया हुआ पहनेंगे। डेटाच हो गए। असंग शस्त्रेण दृढ़, अच्छा कैसे दृढ़ेन? दृढ़ेन माने पूरी ताकत लगा के काटना है, दृढ़ेन मजबूती से। ऐसा नहीं धीरे धीरे काट दिया फिर रुक दिया, ऐसा ऐसा होता नहीं है। हाँ जी, हाँ कैसे? बिल्कुल अच्छा कहा आपने, फिर से बोलिए। एक बार में काट दिया श्रीधर स्वामी ने, एक बार में असंग सनातन गोस्वामी ने एक बार में काटा। रूप गोस्वामी ने वास्तव में वो सब बड़े बड़े हिम्मत वाले व्यक्ति है, इसलिए गुजराती भाषा में एक बात है, हिम्मत को हरि ढोंगडे कायर को हरि दूर। मतलब जो हिम्मत वाला पुरुष होता है हरि उसके सामने भागता है, सॉरी पीछे भागता है, और जो कायर होता है हरि उससे भाग जाता है। इसे क्या भाग, इसे क्या करे, हिम्मत वाले के पीछे हरि भागता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ है न, धीरे धीरे नहीं दृढ़ है न, संकल्प के द्वारा। सनातन गोस्वामी देखो कैसा, ऐसा छोड़ा और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी परीक्षा ली, अद्भुत परीक्षा है, अद्भुत परीक्षा है। कपड़े कपड़े महाप्रभु ने दिलवाया चंद्रशेखर के अंदर अंतर्यामी के रूप में रह करके, कहे बढ़िया सनातन जी आए हो, नई धोती ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है, हमने जन्माष्टमी के लिए भक्तों के लिए नई धोती लाए। भक्त सब पुजारी डिपार्टमेंट ने दिया, हम भी दिए, कई लोग और भी देते हैं, नई धोती हम देते हैं, हम पहनते हैं। पर सनातन को जब नई धोती मिली, सनातन ने क्या कहा, ये हमें नहीं चाहिए। यदि फिर तपन मिश्र के पास भेज दिए, उसने भी नई धोती दी, तो तपन मिश्र ही नई धोती देख करके सनातन कहते हैं, यदि हमें धोती देने की इच्छा है आप में, तो एक पुरानी धोती दे दो जो आपकी पहनी हुई है। महाप्रभु ने जब देखा सनातन गोस्वामी ने उस धोती पुरानी धोती को फाड़ करके एक को ऊपर डाला और एक को नीचे कौपन बना दिया, वैराग्य देखिया प्रभु संतोष अंतरे। महाप्रभु ने जब वैराग्य को देखा, वेरी नाइस, अच्छा है, बहुत अच्छा है, दृढ़ न छित्वा, काट दिया। फिर कपड़े, कपड़े के बाद महाप्रभु क्या आता है, महाप्रभु ने देखा कपड़े, कपड़े में सनातन का बहुत बढ़िया वैराग्य है, उसको ऐसे नहीं कि बनारसी साड़ी चाहिए, हमें सिल्की धोती चाहिए, नहीं, उनको पुरानी धोती चाहिए। सनातनेर वैराग्य प्रभुर संतोष अपार, अपार माने इतना, इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, उसकी कोई सीमा नहीं है। महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा है, अच्छा है। फिर आगे चल के भोजन की बारी आई, चार चार चीज तो चाहिए ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो कपड़े की बात हो गई, अभी रोटी की बात आएगी। चंद्रशेखर ने कहा सनातन जावत काशी ते रहिबा, जब तक तुम काशी में रहोगे तो हमार घरे भिक्षा लेबा, भिक्षा लेना। पर सनातन ने कहा नहीं, हम तो भिक्षा क्यों लेंगे, हम तो माधुकरी करेंगे। महाप्रभु देखा कि ये भी बड़ी वैराग्य है, सनातनेर वैराग्य प्रभुर संतोष अपार। ऐसे ऐसे करके बाकी कथा हम कल तो नहीं सुनाए, बाद में सुनाएंगे, कल सार्वभौम प्रभु देंगे। इस तरह से श्री कृष्ण हमसे आग्रह करते हैं, अश्वत्थ मेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्र न दृढ़ न छित्वा। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे मित्रों, ये जो ममता है, ये जो संसार वृक्ष है, ये बहुत ही दृढ़ है, ये बहुत पकड़, इसकी बहुत मजबूत है, इसको काटना हो तो असंग रूपी शास्त्र चाहिए। और शास्त्र होने से केवल नहीं चलेगा, उसको दृढ़ता के साथ चलाना भी चाहिए। तो इसलिए भक्तों को थोड़ा थोड़ा कठोर दिल वाला होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कठोरता अच्छा है, अच्छी चीज है, पर शुरू शुरू में थोड़ी कठोरता चाहिए, थोड़ा हार्ड, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चाहिए हार्डनेस। नहीं तो जैसे वो सर्प की बात आई, उसे सब पत्थर फेंकने लगे। अरे नारद जी ने कहा मैंने तुमको काटने के लिए मना किया था, फूफू करने के लिए थोड़े मना किया था, फूफू कर लेते, हाँ फूकार कर लेते, तुम्हारे पास कोई नहीं आता। तो असंग शस्त्र न दृढ़ न छित्वा। हरे कृष्ण, तीन श्लोक तक यत्किंचित व्याख्या हो गई, और आगामी जितने श्लोक रहे 17 श्लोक वो आप सर्वम प्रभु से श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।